ஓம் சாந்தி. हम सब बाबा के सहज योगी बच्चे, जिनके दिल में बाबा बसता है, सांसों सांस अनहद आवाज अजपाजाप रूप में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा ने हम सबको इतनी पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन बना कर दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, जो बाबा की याद भूल ही नहीं सकते। सहज योग को लेकिन कई बार हम खुद ही मेहनत और मुश्किल वाला बना देते हैं। बाबा ने कभी भी योग शब्द के रूप में योग करना है ऐसी बात नहीं कही है। बच्चे याद में रहो, बाप और बच्चे के संबंध से याद करो बस। लेकिन बहुत से बाबा के बच्चों की कंप्लेन रहती है, याद में जब बैठते हैं तो बुद्धि भटकती है, योग नहीं लगता है। किस बात को हम योग योग कहते हैं? शायद सोचते हैं कि कोई चीज सामने दिखाई दे, या हम इतने खो जाएं जो कोई संकल्प ही ना आ जाए। संकल्प को शून्य बनाना, जड़ बना देना, क्या यही योग है? भक्ति काल के अंदर तो हठ योगियों ने ऐसी ऐसी समाधि लगाई हैं जो निर्जल रहे हैं, सांस पर भी ध्यान दिया है, मन को जड़ बना दिया, और फिर कहते हैं ये निरसंकल्प समाधि है। बाबा ने निरसंकल्प समाधि शब्द को ही खत्म कर दिया। जैसे कर्म संन्यास नहीं होता, ऐसे ही निरसंकल्प समाधि नहीं होती। कर्म संन्यास, कोई कहे कि मैं कर्म संन्यासी हूं, तो बाबा उसको कहते, बच्चे ये जो देख रहे हो, सुन रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, ये कर्म नहीं है क्या? सिर्फ भोजन नहीं पकाया, दूसरे के हाथ से घर से मांग के ले आए और कहते हो हम कर्म नहीं करते, कर्म सन्यासी हैं। तो ये कर्म सन्यासी नहीं हो, कर्म के बिना तो इस कर्म क्षेत्र पर कोई आत्मा एक मिनट भी नहीं रह सकती, कर्म तो करना ही है। लेकिन वो कर्म योगी बन जाए, कर्म करते बाबा की याद बनी रहे, उसके साथ हमारा बुद्धि का योग जुटा रहे, वो भी एक प्रकार का संन्यास है। क्योंकि सब बातों का त्याग करके एक बाबा में बुद्धि टिक गई, एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा ने हम सबको इतना सहज योगी बनाया है कि बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, अपनी दिनचर्या के अंदर बाबा को साथी बना लो। जैसे आज की मुरली में था, अमृत वेले क्या संकल्प करना है, मुरली के समय क्या संकल्प करना है, कर्म के समय क्या संकल्प करना है, भोजन के समय क्या संकल्प करना है, सैर के समय क्या संकल्प करना है। संकल्प करना है, संकल्प को सोने नहीं बना देना है। कोई न कोई संकल्प लेकर के ही, एक बार एक क्लास हुआ था, जगदीश भाई ने कराया था कि संकल्प माना जो सारा कल्प चलता है, रुकता ही नहीं है। इस मशीन के अंदर आ गया, शरीर के अंदर आ गया, आत्मा आई, संकल्प चलना शुरू हो गया। संकल्प एक उसकी शक्ति है, तो हम सब अपने संकल्पों की गति पर ध्यान दें। ये जो भटक रहे हैं संकल्प इधर से उधर, उनको ही सही दिशा देना, इसके लिए मैं आपको 5-7 बातें बताता हूं जिससे योग की गहन अनुभूति हम कर सकें। क्योंकि हम चाहते सभी हैं कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा के प्यार में खो जाएं, लगन में मगन हो जाएं, उस लौलीन स्थिति का अनुभव हो, बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। लेकिन कई बार आधा घंटा एक घंटा अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, फिर कहीं इधर बुद्धि कहीं उधर बुद्धि, बीच बीच में कोई काम होंगे, और जब योग में बैठते हैं तो ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो ढूंढने से संकल्प ना आते हों, वो भी संकल्प आ जाते हैं। क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र होने लगती है तो भूली हुई बातें भूली हुई चीजें भी याद आने लगती हैं। थोड़ा सा मन और बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए। किस लिए हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए हम यहाँ आए हैं, क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर थोड़ा सा बैठते समय हम मनन चिंतन करते हैं, मन को स्वचिंतन देते हैं, तो योग का एक पहला आधार बनता है। सिर्फ सीधा सीधा आके बैठ गए, कोई कोई दिन तो अचानक ऐसे बैठते ही बाबा के प्यार में खो जाते हैं, जैसे बाबा ने बुला लिया अपने पास, वो सहज योगी जीवन का अनुभव हो जाता है। लेकिन अधिकतर हम कार्य व्यवहार में रहते हैं, बहुत सी बातें नीचे ऊपर होती हैं, और फिर हम आकर के बाबा की याद में बैठते हैं तो मन और बुद्धि कहीं न कहीं इधर उधर भटकती है। उसको एकाग्र करने के लिए पहले चाहिए श्रेष्ठ चिंतन। स्वचिंतन करो, बाबा ने आज क्या कहा है, बाबा से आज कौन सी बात, कौन सा खजाना मिला है, ऐसे बातें करो। मुरली का कोई न कोई वरदान, स्लोगन, कोई अच्छी बात जो आपको सवेरे सवेरे अच्छी लगी हो, उसका चिंतन करो योग में बैठते समय। और अगर उस प्रकार का चिंतन, मान लो मुरली कई बार याद नहीं आती है, तो अपने भाग्य का चिंतन करो। कितना श्रेष्ठ भाग्य जो सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए इतनी भक्त मेहनत कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना जन्म लगेगा भगवान के दर्शन के लिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता ही नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कौन है, बिना एड्रेस के ही बेचारे ढूंढ रहे हैं। हम सबको बाबा खुद मिला और मिल करके अपने आप का परिचय दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस रूप में आता हूँ, कैसे मिलता हूँ, ने अनुभव कर लिया। तो ये भाग्य का एक अच्छा चिंतन, स्वचिंतन के साथ साथ भाग्य का चिंतन करो, भगवान कैसे मिला, किन भक्ति का फल हम बच्चों को मिला है। ऐसे बैठ करके बहुत खुशी और नशे में एकदम रोमांचित हो जाए आत्मा, क्योंकि याद का आधार है। जैसे प्लेन को उड़ाने के लिए प्लेन में बहुत रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है। ऐसे ही मन और बुद्धि बाबा पे पहुंच जाए, आत्मा सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होकर के अपने मूल वतन की सैर करे, उसके लिए बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। नशा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, उमंग भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, नीरस संकल्प नहीं, बहुत प्यार के संकल्प, भावना के संकल्प। भगवान से मिलने का ये गोल्डन चांस मिला है, आत्मा प्रभु मिलन करने के लिए बैठी है। भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान से मेरी रूह रियान, मेरी वार्तालाप होगी। ऐसे ऐसे स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन के साथ बहुत मीठी रूह रिहान को बाबा के प्यार में खो जाओ। कईयों को एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, अभ्यास करते हैं, बाबा को बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं, जैसे कोई बिछुड़ा हुआ संबंधी मिल जाता है या उसका एड्रेस मिल जाता है जिससे प्यार होता है, तो उसकी शक्ल सूरत सब याद आती है और उसको लिखने लगते हैं कि आपने मुझे इस समय पर मदद की, आपने कितनी मेहर की, आपने ये क्या, बहुत प्यार से। ऐसे अगर अभ्यास करके देखो योग कैसे सहज हो जाएगा। बहुत प्यार से बाबा को प्यार का पत्र लिख दो, यहाँ पर आए हो लिखना। मैं एक सेंटर पर गया था तो एक बहन ने मुझे दिखाया अपनी डायरी कि मैं रोज नए नए संबंध से बाबा को पत्र लिखती हूँ और जिस प्रकार की भावना से बैठ के लिखती हूँ बाबा कहीं न कहीं उस प्रकार का अनुभव मुझे कराता है। कभी बाप रूप से, कभी शिक्षक रूप से, कभी सतगुरु रूप से, कभी साजन के रूप से, कभी सर्जन के रूप से, कभी भोला भंडारी के रूप से, कभी धोबी के रूप से। बाबा धोबी भी है ना, कपड़ा धो देता है, आत्मा को पावन बना देता है। तो ऐसे बहुत सारे संबंधों से बाबा को उसने पत्र लिखे थे और इतना प्यार, जैसे गोपिकाएं होती ना, गोपिकाओं का प्यार गाया हुआ है, गोपी जैसी एकदम बाबा बाबा बाबा, और कुछ उसकी बुद्धि में था ही नहीं। तो ये योग का एक बहुत सहज आधार है कि आप बहुत दिल से बाबा से बातें को बहुत प्यार उमड़े कि बाबा आपने क्या बना दिया मुझे। स्नेह और भावना के साथ सच्चाई है कि मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में बैठ जाना, क्योंकि वो देह नहीं है, उसको लौकिक में देहधारी संबंध नहीं है। अगर हम उससे सचमुच मिलन और शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो जैसा बाबा है ऐसा ही मुझे बनना पड़ेगा। भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, ये अभ्यास जरूर करना होगा कि मैं इस देह से अलग हूँ। इस भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई एक मणि हूँ। योग का यथार्थ स्वरूप है देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होना। और ये अभ्यास करते करते एकदम ऐसे लगता है जैसे देह का भान छूट गया है, मक्खन से बाल ऐसे निकल गया, आत्मा ऐसे हल्की हो गई, ऐसे लाइट हो गई जैसे कोई शरीर का बोझ नहीं है। और जब अपने स्वरूप में स्थित होती है तो जो कोई चीज हल्की होती है। आज भी बाबा कह रहे थे जब हल्कापन होता है, फरिश्ता माना हल्का, फरिश्ता माना जिसका रिश्ता नहीं किसी से, वो अपने आप हल्की चीज ऊपर चली जाती है, भारी होगी तो नीचे आ जाएगी। कोई भी संकल्पों में भारीपन होगा तो कभी भी आप परमधाम की स्टेज, सूक्ष्म वतन की स्टेज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत लाइट एकदम बाबा को अर्पित कर दो, संकल्प भी अर्पित कर दो, बाबा आप मिल गए, अब आप ये सब बोझ आपके हैं। ऐसे रूह रियान करते करते बाबा को अपने सब संकल्प अर्पित करके आप डबल लाइट बन जाओ, फिर बाबा आपको वतन की सैर कराएगा। ऐसे नहीं सैर कर पाएंगे, वैसे भी जब सैर पर या कहीं यात्रा पर जाते हैं तो सबसे सुखद यात्रा का अनुभव उनको होता है जिनके पास कोई सामान नहीं होता। अगर ज्यादा सामान उठा करके चल रहे हैं यात्रा के समय, दो चार गठरियां साथ में हैं, तो उसी पर ध्यान रहता है, यात्रा का आनंद नहीं ले पाते, सुख नहीं ले पाते। बाबा भी कहता है बच्चे जितनी गठरियां हैं तुम्हारी कर्म बंधन की, बहुत सी गठरियां साथ हैं, मुझे अर्पित करो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, सर्वेंट हूँ, आप मुझे दे दो और तुम हाईलाइट हो जाओ। जिसने बुद्धि से अर्पित कर दिया अपने संकल्पों को, योग का बड़ा अच्छा अनुभव कर लेता है कि बाबा ये सब आपका है, बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है, सब झंझट जो भी हैं ये मेरे नहीं है, ये आपके हैं। ऐसे अर्पित किया बुद्धि से, हल्के हो गए। और हल्के होते ही आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा है। आत्मा बिना शरीर के कहीं आती जाती है तो उसको अनुभव नहीं होते, शरीर छोड़ते ही उसको लाइट का शरीर मिल जाता है, दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी उसको लाइट का शरीर चाहिए। इस साकार सृष्टि के अंदर बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कोई भूत प्रेत कोई ऐसी विल आत्माएं भी किसी को मिलती हैं, वो भी शरीर के साथ मिलती दिखाई देती हैं। ये विल संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, और जो संकल्प जिन संस्कारों के साथ शरीर छोड़ती है उसी प्रकार की छाया काया के रूप में दिखाई देती है। अगर कोई पवित्र आत्मा है, सुख दे करके गई है, बहुत पुण्य कर्म करके गई है, तो वो फरिश्ता बन करके जाती है, वो लाइट का शरीर सफेद सफेद दिखाई देता है। और कोई एकदम खूंखार दुख दिया है, बहुत पाप किए हैं, बहुत नेगेटिव है, शरीर छूटेगा तो वो कैसी छाया होगी? है उसके पास भी छाया, वो दुख देने वाली है, वो सुख देने वाली है। योग के अंदर भी जब हम बैठते हैं तो ऐसे पवित्र और शुद्ध संकल्पों में रमण करते करते जब आत्मा अपने भ्रकुटी आसन पर बैठती है तो उसके चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा निर्माण होता है जिसको आभा मंडल कहते हैं। हर पवित्र आत्मा धर्म आत्मा के चारों ओर वो आभा मंडल उनकी पवित्रता का सूचक एक चक्र के रूप में दिखाते हैं, वो लाइट का शरीर है। तो जितना हम आत्मा पवित्र और शुद्ध बनती जाती, बहुत सुख देने का कार्य करती हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों में रहती हैं, वो संकल्प बहुत लाइट होते हैं और वही संकल्प बाबा से मिलाते हैं। बाबा कंबाइंड है, योग में एक बाबा कहते हैं बच्चे कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, आज भी बाबा कह रहे थे शिव शक्ति स्वरूप का अनुभव करो, भविष्य में विष्णु के रूप में कंबाइंड हो, संगम पर बाप और बच्चे के रूप में कंबाइंड हो। कैसे कंबाइंड होंगे हम अगर ये मिट्टी की देह लिए घूम रहे हैं, देह अभिमान नहीं छूटा है और बाबा को देह नहीं है, मिट्टी नहीं है, कंबाइंड कैसे होंगे, समान कैसे होंगे, साथ कैसे रहेंगे? इसलिए हमें इस देह की मिट्टी से डिटैच होना पड़ेगा, संकल्पों से, जैसे है ही नहीं, मैं अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ। जब याद की यात्रा में आप बैठते हो तो ऐसा चिंतन करो, मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट हूँ और इस भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई एक मणि के रूप में हूँ, मस्तक मणि हूँ। आप देखेंगे लगेगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया, बहुत लाइट हो गया, अब उड़ करके मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। बाबा भी वही लाइट का रूप है और कुछ नहीं है, वो ज्योतिर्बिंदु लाइट है। और उस लाइट माइट के साथ जब आत्मा मिलन मनाती है, रूह रियान करती है, तो उसको बड़े सुखद अनुभव होने लगते हैं, शक्तियों का अनुभव होने लगता है। हम योग किस लिए कर रहे हैं, योग करना किस लिए चाहते हैं, भट्टी किस लिए रखते हैं? कि जो आत्मा ने पाप कर्म किए हैं, जो विकर्म हुए हैं, जो संस्कार प्रबल हो गए हैं, उन संस्कारों को हम समाप्त करें, परिवर्तन करें, योग की ज्वाला से, योग की अग्नि से हमारे विकर्म दग्ध हो जाएं, पाप नाश हो जाएं। अब कैसे नाश होंगे, कोई ऐसी ज्वाला तो नहीं है जिसके अंदर डाल दो और बदल जाएगा, ये तो प्यार की आग है, ये तो स्नेह की अग्नि है। बाबा के प्यार में खो जाओ, लगन में मगन हो जाओ, लौ में लीन हो जाओ, इसी याद से जो पुराने संस्कार हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे। कई बाबा के बच्चे 8 साल 10 साल 15 साल ज्ञान में चलते हैं लेकिन अभी तक भी संस्कार चेंज नहीं हुए हैं। माना याद यथार्थ नहीं है, अगर याद यथार्थ है जो कल संस्कार था आज क्यों दिखाई दे? बोल चाल में चलन में कई प्रकार से वो प्रकट होते हैं संस्कार, और अगर चलन को भी हम ध्यान देते हैं तो स्वप्न में आते हैं, कहीं न कहीं से लीकेज होती है। कोई भी प्रबल संस्कार अगर छिपा हुआ है, कई बार हम लोग अपने अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, अच्छे चिंतन से उन संस्कारों को दबा देते हैं, जैसे बीज हो और बीज आप अपने घर में रख लो, कोई स्थान पर ढक करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा करके उसको रख दो, बीज सुरक्षित है, आप समझ रहे हो बीज रखा हुआ है, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, उगेगा नहीं, क्योंकि उसको आपने पानी और मिट्टी से दूर रखा है, वायुमंडल में सब प्रकार से उसको सेफ करके रखा है। लेकिन जिस दिन आप उसको बाहर निकालेंगे, जिस दिन उसको हवा पानी मिलेगा, मिट्टी का संग मिलेगा, उस दिन उस बीज में अंकुर आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई संस्कार अगर हमने अच्छे संग में आकर के, अच्छे भोजन खा करके, अच्छी संगत से, पढ़ाई से दबा दिए हैं, हो सकता है लगे कि मैं तो बहुत पवित्र बन गया हूँ, बहुत शुद्ध बन गया हूँ, मेरा तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। लेकिन जब ऐसा कोई वायुमंडल बनेगा, जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, तो वो संस्कार जो छिपा है, दबा है, वो बाहर आएगा। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने संस्कारों का संस्कार कर दें। यहाँ तक बाबा मुरली चलाते हैं, बच्चे राख भी अपने पास नहीं रखना, जैसे जलाने के बाद मिट्टी को, जो हड्डी मिट्टी बचती है राख, उसको गंगा में बहा देते हैं, रखते नहीं है, कहते हड्डियां भी रखी होंगी तो भूत आ जाएंगे। कोई भी संस्कार ऐसा आपको दिखाई दे, इसके लिए बहुत परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। एकांत में बैठ करके अपने आप पर नजर डालो। हमारी दादी जी एक पुरुषार्थ करती थी, दादी कहती थी कि मैं अपने, ऐसे हाथ करके बताती थी, मैं अपनी हथेली पर अपनी आत्मा को ऐसे सामने लाती हूँ और बहुत चारों तरफ से नजर घुमाती हूँ, कोई दाग तो नहीं है, ये हीरा है, ये अमूल्य हीरा, इसमें कोई भी दाग इसकी वैल्यू को कम तो नहीं कर रहा है, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, आसक्ति का, घृणा का, वासना का, तृष्णा का, बहुत सारे सूक्ष्म संस्कार हैं। विकारों को तो जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े बड़े रूपों को पहचान लिया, लेकिन वो छिपा हुआ जो अंश है, संस्कारों में दबा हुआ जो है, उसके संस्कार करने के लिए योग की ज्वाला चाहिए, बहुत लगन चाहिए, और वो एकाग्रता से ही उत्पन्न होती है। जितना प्यार, जितनी एकाग्रता है, उतना योग ज्वाला स्वरूप बन जाता है, पावरफुल हो जाता है, ऐसे लगता है बस मैं और मेरा बाबा, कोई दूसरा नहीं। अनुभूति के संकल्प हैं, लेकिन कोई हलचल वाले संकल्प नहीं है, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है, इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि अनुभव करने का साधन संकल्प है। वतन का अनुभव, मूल वतन का अनुभव बिना संकल्पों के नहीं किया जा सकता। संकल्प है, लेकिन किस प्रकार के संकल्प है उसकी क्वालिटी है, बहुत शुद्ध, पवित्र, धैर्यवत, शांत वाले संकल्प है, अनुभव के संकल्प है, खो गई आत्मा, बाबा के प्यार में बाबा को देखते देखते मगन हो गई। जैसे शारीरिक रूप में भी कोई का कहीं प्यार होता है, उसको देखने लगे, क्या हो रहा है चारों तरफ से, वो कुछ पता नहीं, कोई पूछता है भाई कहाँ हो, खोया हुआ है। ऐसे बाबा के प्यार में खो जाएं, तो जितनी एकांत और एकाग्रता का अभ्यास है, उतना बहुत अच्छे सुखद अनुभव होने लगते हैं। और उस अनुभव में आत्मा जब समा जाती है, स्वयं को देखना और बाबा को देखना, बस स्वयं को किस रूप में देखना, कि मैं एक बहुत चमकती हुई लाइट, बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। शरीर से आत्मा निकल के कहीं नहीं जाती है, ट्रांस में भी जाती हैं दादियां बहने, ऐसे नहीं आत्मा निकल के चली गई, आत्मा निकल के जाएगी तो शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, वो तो ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उसके संस्कार मर्ज और इमर्ज होते हैं, यहाँ से मर्ज हो जाती है, वहां इमर्ज हो जाती है, उसके सामने सूक्ष्म वतन आ जाता है। कोई का मोबाइल बज रहा है, चल 5:30 का हमने का गीत बजेगा। तो ऐसे ही अपने संस्कारों को इमर्ज इन संस्कारों को मर्ज करके उनको इमर्ज कर देना। किसी भी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए पुराने संस्कार हैं सबके अंदर, कोई ऐसे कलयुग में नहीं कहेगा कि मैंने अपने सब संस्कार चेंज कर लिए। हर एक पुरुषार्थ कर रहा है नंबर वार, किसी ने 80% जीता है, किसी ने 90% जीता है, कोई ने 50 जीता होगा, कोई न कोई पुराना संस्कार अभी भी है, लेकिन कुछ लोग उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। दुख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, कोई न कोई कारण कारण से संबंधों में टकराव बिखराव हो रहे हैं, लेकिन कौन से संस्कार के कारण होते हैं उसका पता नहीं चलता। इसलिए जब ऐसी भट्टियां हम करते हैं, एकांत में आते हैं, तो पता चलता है, महसूस होता है, जैसे कोई दर्पण के आगे खड़ा हो जाए, कहीं पर भी कपड़े में चेहरे में कोई छोटा दाग होगा, अगर दर्पण साफ स्वच्छ है तो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मधुबन शीश महल है और इस शीश महल में आने से कई बातें पता चलती हैं। अगर हम बाबा के भी शीश महल में कमरे में चले जाते हैं तो बाबा ही हमारे आगे दर्पण है, बाबा कैसा है और मैं कहाँ हूँ अपने आप का पता चलता है। तो बहुत सूक्ष्म बाबा के दर्पण को देखते हुए अपने आप को हम देख सकते हैं कि मेरे अंदर अभी तक भी कौन से संस्कार हैं जिन्हें मुझे परिवर्तन करना है, और उसके लिए मुझे कुछ तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि बैठ जाएं, नींद छोड़ दें, भोजन छोड़ दें, लेकिन तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प किया जाए उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए कि संकल्प से हटेंगे नहीं, मिट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। अगर वो संकल्प इतना दृढ़ होता है कि अगर कोई हमारी बार बार दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, विकारी होती है, कभी बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कोई चीज आकर्षित करती है, कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं ये कर्म नहीं होने दूंगा, इस प्रकार का संकल्प लेने से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, वो तपस्या है। तो ऐसी तपस्या आत्मा जब करने लगती है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे नहीं बोलना है, ये मुझे नहीं देखना है, ये मुझे नहीं सुनना है, जब अंदर से संकल्प में दृढ़ता आती है परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन पहले महसूस हो कि ये गलत है मेरा संस्कार, समझ के बाद महसूसता आती है, मुरली से समझ मिल जाती, मुरली हमको समझदार बना देती है, मुरली की कोई कोई बातें ऐसे टच होती हैं, ये मेरे में है अभी तक, अगर मेरा कोई ऐसा अपमान कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जैसे आज की मुरली से कोई इज्जत ले ले, कोई डिसरिगार्ड कर दे, कोई अपशब्द बोल दे तो मैं चिड़चिड़ा हो जाऊं, गुस्सा आ जाएगा, ये संस्कार है। अब बाबा ने उसको महसूस तो करा दिया, रियलाइज तो हो गया, समझ तो दे दी, लेकिन क्या उसको समाप्त करने के लिए है, हम जानते हैं, उसके लिए मैंने तपस्या की है। और वो तपस्या जब चलेगी अंदर अंदर तो धीरे धीरे आपको लगेगा वो संस्कार समाप्त हो गया, मैं आत्मा बिल्कुल निर्दोष, निश्चल, निष्कपट, बहुत स्वच्छ साफ बन गई हूँ। अपने आप को देखने के लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी। चार बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले पानी कहीं बह रहा हो उसको इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा हो रहा है कहीं पर, एकाग्र हो गया, धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, पहले इकट्ठा किया, एकाग्र किया, फिर स्थिर होने लगा, और जब वो स्थिर होने लगता है तो इधर उधर के जो कण है, मिट्टी धूल है, वो धीरे धीरे नीचे चली जाती है, उसके बाद उसमें स्वच्छता आ जाती है। पहले एकाग्रता है, फिर स्थिरता है, फिर स्वच्छता है, और स्वच्छता के बाद बहुत स्पष्टता आ जाती है, स्पष्टता। अगर उसके गहरे पानी में भी कोई बहुत छोटा सा एक पैसा डाल दो तो भी बड़े रूप में ऐसे दिखाई देने लगता है, चमकता है, 50 फुट गहरा है लेकिन ऐसे लगता यही है, इतना स्पष्ट है। ऐसे ही जब आत्मा बिल्कुल स्थिर होने लगती है, एकाग्र हो जाती है, अपने स्वस्वरूप में स्थित होने हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देने लगता मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मेरा बाबा जो है जैसा है, उसको सिद्ध करने की या उसमें संशय और निश्चय की बात नहीं रहती है। ऐसे लगता है कि सचमुच पाना था सो पा लिया, जिसको ढूंढ रहे थे वो मेरा बाबा मुझे मिल गया। उस रूप में, उस ज्योति रूप में बाबा से मिलन होने लगता है, और उस मिलन की पहली निशानी दिखाई देती है, आत्मा एकदम आनंदित और रोमांचित हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है, योगी वो है जिसने परमानंद की अनुभूति की है, उस मिलन से वो परमानंद की अनुभूति होती, ज्ञान चिंतन से, परिवार के मिलन से अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है, गोप गोपियों के अतीन्द्र सुख का गाया हुआ गायन है, लेकिन योगियों का आनंद परमानंद गाया हुआ है। अगर ऐसे अनुभव हमने नहीं किए हैं, अब समय है मधुबन की भट्टी में आप करके देखो वो परमानंद का अनुभव क्या है, उसमें कितनी स्थिरता, कितनी एकाग्रता, कितनी स्वच्छता, कितनी स्पष्टता है, जो मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ और मैं और मेरा बाबा बस उससे मिलन हो रहा है। रिलेशन के आधार से कनेक्शन जुट जाता है, हम बाबा कहते हैं, कनेक्शन जुटता है, उसकी शक्तियां करंट के रूप में आने लगती है। अगर वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो क्या मैं आत्मा सुख स्वरूप, प्यार स्वरूप, आनंद स्वरूप बनी हूं? और अगर बनी हूं तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कर्म में दिखाई देना चाहिए। एक बार कनेक्शन जुट गया और हमने उसकी शक्ति ले ली है, तो हमारी चलन, चेहरे और व्यवहारिक जीवन के अंदर वो सब लक्षण दिखाई देने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। कितनी शीतल, कितनी निर्माण, कितनी नम्र चित आत्मा है, भोलापन नहीं है, नम्रता है, भोलापन भी नुकसान करता है। बहुत नम्र चित होगा कि एकदम ऐसे लगेगा जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, आज हम दादी को देखते हैं, गुलजार दादी बाबा के बिल्कुल समान है, आप देखो कभी समीप से, इतना इनोसेंट चेहरा है, कोई जैसे कुछ जानती नहीं दुनिया की बातें, बिल्कुल भोलापन जैसे दिखाई देता, भोला नहीं है लेकिन एकदम सरल, एकदम शीतल, दृष्टि भी सुख दे रही है, मुस्कुराहट भी सुख दे रही है, कोई कोई एक सेकंड ऐसे देख लेती हो कहता मुझे बाबा मिल गया, दादी है, दादी कहती मैं बाबा नहीं हूँ, एक दिन मैं ऐसे रूह रिहान कर रहा था, बैठा था, दादी अभी तो आप बाबा बन गई, कहती कैसे बन गई, मैं दादी इस बारी जब बाबा आए ना आपके तन में तो आप ट्रांस में कहाँ गई थी, उस दिन बाबा आए थे ना पिछली बार, तो दादी आई स्टेज पर बैठी और थोड़ी देर में ऐसे ही बाबा ने दृष्टि देना शुरू कर दिया और हाथ हिला करके आशीर्वाद दे दिया, देखा होगा आप लोगों टीवी पर, ये 44 साल में पहली बार मैंने देखा, बाबा तो कितनी बार आए हैं, जब तक वो ट्रांस में नहीं जाती है तब तक बाबा आते नहीं है, पहले बहुत देर तक रूह रिहान करती थी, अभी जाती है 2 मिनट बाबा को बोलती है, बाबा आ जाते हैं। लेकिन उस दिन मैंने दादी को ऐसे ही बाद में गए मिले, तुमने कहा दादी अब तो आप ही बाबा बन गई, समान हो गई, कहती कैसे हो गई, तो बाबा को लेने थोड़ी गई थी आप, आपके साथ ही बाबा था भाई, बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, आप ट्रांस में नहीं गई और आते ही बाबा ऐसे आप बैठी और बाबा ने दृष्टि देना शुरू कर दिया, क्या है समान नहीं है क्या? तो हंसने लगी, कहती नहीं नहीं बाबा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, नहीं आप समान बन गई। अनुभव होता है, कोई भी चला जाए सामने तो ऐसे लगता है बाबा से ही मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनाई है, माना वो योग के गहन अनुभव किए हैं, वो गहराई का अनुभव किया है। आप देखो कोई भी व्यर्थ बातों से लेना देना नहीं, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी कारोबार है, इतनी बातें हैं, सब बातों को जानती भी, ऐसा नहीं नहीं जानती, पता ही नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए अपने आप को न्यारा कर लिया, उपराम कर लिया, हल्का कर लिया और समान बन गई। प्रैक्टिकल है सामने, प्रूफ है ना। ऐसे ही अगर हम सभी भी अभ्यास करते रहेंगे योग का गहरा अभ्यास अनुभव, तो बाबा के समान बन जाएंगे। क्या बड़ी बात है, बाबा अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। इसके लिए सदा एक ध्यान रखना, हर कर्म ऐसा सुखदाई हो, हर बोल ऐसा सुखदाई हो जो हर आत्मा दिल से दुआएं दे। अगर दुआएं मिल रही हैं तो योग में कोई मेहनत नहीं है, और दुआएं उसको मिलती हैं जो सदा सुख देने का काम करता है, सदा आज्ञाकारी होकर के रहता है, हर परिस्थिति में मददगार बन करके रहता है, तो दुआएं मिल जाती सहज। अगर हम अपने इस प्रैक्टिकल जीवन के अंदर एक लक्ष्य रख लें, कोई बद्दुआ भी दे मैं उस स्वीकार न करके उसको दुआ दूं, बहुत स्नेह से, बहुत शक्तिशाली स्थिति से, जो बाबा ने मुझे दिया है मैं सबको बांटूं। बाबा ने हमको कितने दुआएं दी हैं, कितने वरदान दिए हैं, उन दुआओं वरदानों से जीवन चल रही है, हम भी बाबा की तरह सब आत्माओं को सुख देते चले। आज बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था, बच्चे सुखदाई सीट पर स्थित रहो। ये सुखदाई सीट है, इस पर अगर स्थित रहोगे योग बहुत सहज लग जाएगा। लेकिन अगर किसको जरा भी कहीं दुख देख करके आए हो, बैठो योग में, वही संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दुखदाई कोई भी संकल्प किसी आत्मा के प्रति मुझे नहीं करना, संकल्प भी नहीं करना। अब ध्यान है संकल्पों पर, कोई आत्मा कैसी भी है, कुछ भी कर रही है, लेकिन मुझ आत्मा को उसके प्रति सदा शुभ सोच करके, अच्छा सोच करके सुख देना है, सुख लेना है, बस दुआएं देनी है, दुआएं लेनी, ये योग का गहरा आधार बन जाता है, अच्छी अनुभूति होने लगती है, बैठते ही स्थिरता आ जाती, स्थिरता आती ही मिलन होने लगता, मिलन होने लगता तो अनुभूतियां होने लगती। इसलिए ये सब फाउंडेशन है जिनको मजबूत करना। सिर्फ कुछ समान स्मृति में रखो, जब योग नहीं लगता, मेहनत लगती है, तो समान का चिंतन करो। समान का अर्थ है स्वयं स्वयं को मान देना, स्वयं को मानना, मान भी दो और स्वयं को मानो, मैं क्या हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। जब आत्मा स्वयं को मान देती है, स्वयं को मानने लगती है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो बहुत सहज योग लग जाता है। कभी नहीं कंप्लेन करो योग नहीं लगता, एक जैसा योग नहीं करो नहीं तो बोर हो जाओगे। कई लोग आते हैं, आधा घंटा समय होता है, 20 मिनट समय होता है, बैठते हैं, बस वो एक ही रिकॉर्ड, एक ही कमेंट्री, एक जैसा चिंतन, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, और थोड़े दिन चलने चलते कहते हैं ऐसा ही योग करना ना, मैं तो थक गया, योग ही नहीं लगता। इसलिए बाबा कहता बच्चे योग में बहुत वैरायटी अनुभव करो, नवीनता हो, वैरायटी हो। आज आत्मा के 7 गुण है, 7 गुण है ना, ये तो पहले लेसन में पढ़ लिया है। कभी ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञान के सागर की लहरों में लहराओ, कभी शांत स्वरूप होकर शांति के सागर में डूब जाओ, कभी प्रेम स्वरूप बन करके प्रेम के सागर में एकदम गोते लगाओ, कभी पवित्र स्वरूप बन करके पवित्रता की गहराई का अनुभव करो, कभी सुख स्वरूप, कभी आनंद स्वरूप, कभी शक्ति स्वरूप। आत्मा के 7 गुण है तो 7 दिन तो वैरायटी हो सकता है ना। योग की 5 स्टेजेस बाबा ने बताई हैं, 5 स्टेजेस के अंदर 3 स्टेज साकारी याद में आती हैं, एक आकारी याद में, एक निराकारी याद में। कम से कम 5 दिन वैरायटी अनुभव हम कर सकते हैं। चलो आज मैं साकारी याद में बैठूंगा, मैं कहीं सूक्ष्म तन मूल वतन नहीं जाता, मैं बाबा को कहूंगा बाबा आप हमारे पास आ जाओ, क्यों मेहनत करूं मैं बाबा के पास जाने की, बाबा को नहीं बुला सकता हूं क्या। बैठ जाओ बाबा के प्यार में, खो जाओ, चिंतन करो बाबा कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन दिया है, कितना पवित्र स्वच्छ निर्मल जीवन दिया है, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसा व्यवहारिक जीवन था, आपने सब बदल दिया, क्या मेरा भाग्य जो आप मुझे मिल गए, ऐसे ऐसे रो रियान करो। ब्राह्मण जीवन का भाग्य पालना पढ़ाई श्रीमत स्वयं डायरेक्ट भगवान के द्वारा हमको मिल रही है, कदम कदम पर साकारी याद में बैठो नशा चढ़ जाएगा। पास्ट में चले जाओ, कितना पूज्य स्वरूप है, कितनी भक्तों की लाइन मेरी मूर्ति के आगे लगी है, अनुभव करो। मैं एक मूर्ति के रूप में विराजमान एक मंदिर की मूर्ति हूँ और मेरे अंदर आत्मा प्राण ऐसे प्रतिष्ठा हुई और कितने भक्तों की लाइन लगी है, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, साकारी याद के अंदर ये भी आता है। पास्ट में गए तो पूज्य स्वरूप स्मृति में आया, वर्तमान में ब्राह्मण स्वरूप और भविष्य देव स्वरूप है। कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनैलिटी, कितनी प्योरिटी अपने देव स्वरूप में अनुभव करो। हम कई बार कहते हैं हम देवता बनने वाले हैं, हमारा लक्ष्य मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का है, लेकिन कभी अपने आप से पूछते हैं क्या वो रॉयल्टी, वो प्योरिटी, वो पर्सनैलिटी मेरी है, मैं बनूंगा सचमुच, मेरी चलन, मेरा चेहरा, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना देवताओं जैसा है? अगर कोई लक्षण नहीं है तो देवता कैसे बन जाऊंगा, कोई छू मंत्र थोड़ी बाबा कर देगा। संगम पर वो अनुभव करो, पर्सनैलिटी, वो रॉयल्टी, ऐसे नहीं खाना मिला है भागे, कोई चीज टोली में ले दौड़े, रॉयल्टी कहाँ है? तृप्त है, संतुष्ट है, रॉयल संस्कार, किसी में आंख नहीं जाती, कोई कितनी भी अच्छी चीज रखी हो, कोई कितना भी अच्छा हो, कोई में आंख नहीं डूबती, वो रॉयल संस्कार है, कुछ नहीं चाहिए, तृप्त है, भरपूर है, संतुष्ट है। जिस आत्मा के ऐसे रॉयल संस्कार आ जाते हैं वो लगेगा देवता बनने वाला है, तो चलते फिरते देवता ही है, सबको सुख दे रहा है, सुख ले रहा है, देवता माना देना, कोई से लेना नहीं, वो दाता है, जो आए दृष्टि से ले, बोल से ले, जो कुछ है अपने गुणों का दान करो, मन से शक्तियों का दान करो, मुख से, वाणी से ज्ञान का दान करो, कर्म से गुणों का दान करो, तब देवता कहलाएंगे। अगर दान ही नहीं कर रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे, तो देवता कौन मानेगा? तो मैं देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, उस समान में स्थित होकर के साकारी याद के अनुभव करो। वैरायटी है ये, कभी पूज्य स्वरूप, कभी ब्राह्मण स्वरूप, कभी देव स्वरूप, कभी कभी फिर चले गए बाबा के पास, बाबा वतन में बच्चों का आवाहन कर रहा है, आओ बच्चे, ऐसे जैसे बाहें पसार के खड़ा है, अव्यक्त रूप में बच्चों को बुला रहा है, वतन की सैर करो। इस मिट्टी की देह का भान छोड़ा, लाइट हुए और बाबा की गोदी में समा गए, सूक्ष्म वतन की अनुभूतियां होने लगे, सूक्ष्म शरीर के साथ मिलन मनाओ, दृष्टि लो, शक्ति लो, बाप और दादा कैसे अव्यक्त रूप में ब्रह्मा के तन से मिलते हैं, साकार में तो दादी के तन से मिलते हैं, लेकिन अव्यक्त वतन में ब्रह्मा की आत्मा के, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से मिलन होता है, उस सूक्ष्म वतन का अनुभव। बाबा सैर भी कराएगा, दृष्टि भी देगा, शक्ति भी देगा, हालचाल भी पूछेगा, कोई दर्द होगा उसको भी ठीक कर देगा, फिर अपने निराकारी वतन में बाबा की सकाश, जैसे वो बिल्कुल बीज है, वहां पहुंचे हैं, वहां कोई लाइट, कोई शरीर का भान नहीं है, लाइट का शरीर भी नहीं है, मूल वतन की स्टेज में बिल्कुल निराकारी, मैं और मेरा बाबा बस। जैसे उल्टे झाड़ में आत्माएं सितारे के रूप में चमक रहे हैं शिव बाबा के साथ, ऐसे मैं आत्मा निराकारी स्थिति में वहां बैठ गई हूं। कितनी वैरायटी है, एक जैसा योग थोड़ी है, आधा घंटा एक घंटा तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हम एक जैसा योग करेंगे तो बोर हो जाएंगे, थकावट का अनुभव होगा, उबासी आएगी, इधर के संकल्प उधर के संकल्प, टाइम वेस्ट लगेगा, इसलिए योग को कोई भारी बोझ नहीं बनाओ, बहुत सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, चलते फिरते मेरा बाबा बस। समान की स्मृति ये रहे, एक समान मैं देता हूं आपको, मैं मस्तक मणि हूं, ये मस्तक के बीच में चमकता हुआ मैं मणि बहुत वैल्यूबल सितारा हूँ। आप इस सम्मान की स्मृति में आते देर से डिटैच हो जाएंगे। कभी अनुभव करो मैं तो बाबा के नैनों का नूर हूँ, बाबा के नैनों में नूर चमक रहा है वो मैं हूँ, या मेरे नैनों में बाबा आकर के बाप दादा आके बैठ गए वो नूर बन करके, मैं बाबा का नूरे रतन मैं नूर हूँ। कभी बाबा मेरा दिलाराम है, मेरे दिल में विराजमान है, अलग हो ही नहीं सकता है, मैं बाबा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं बाबा की भुजा हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ, बाबा आपने मुझे चुना है मैं आपका राइट हैंड हूँ, आपके कार्य के लिए हूँ, ऐसे ऐसे बातें रूह रिहान करो, समान में आ जाओ। कभी कंबाइंड हूँ, शिव शक्ति हूँ, पांडवों के साथ पांडव पति साथ साथ है, अलग हो ही नहीं सकता है, शक्तियों के साथ शिव बाबा कंबाइंड है, ऐसे समान लेकर के भिन्न भिन्न रीति से अभ्यास करेंगे तो योग बहुत सहज अनुभव होगा, मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान रखना कोई भी इधर उधर की बातों का प्रभाव, कोई भी छाया की परछाया न पड़े, नहीं तो बुद्धि को खींच ले जाएगी। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहूं बस। तो ज्ञान चिंतन करो, स्वचिंतन करो, एकांतवास करो, अंतर्मुखी बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो, ये सब योग के फाउंडेशन है, और ये पक्का करेंगे तो योग के बहुत गहरे और सुंदर अनुभव कर सकेंगे। तो हम 5 मिनट के लिए अभी क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। 5 मिनट में 6 बातें आपको सुनाता हूँ, कर सकते हैं ना वैरायटी। थोड़े देर के लिए मैं कमेंट्री नहीं दूंगा, लेकिन आपको अभ्यास बताता हूँ। अपने चलते हुए श्वास को देखो, शरीर में जा रही आ रही है, ऐसे श्वास पर अपने आप को एकाग्र करो पहले, फिर धीरे धीरे अपने संकल्पों की गति को देखो, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संकल्पों की गति को देखते देखते अपने चमकते हुए हीरे पर ले आओ संकल्पों को, मणि को देखने लगो, और इस देह से मणि बन करके बाबा के पास मूल वतन में एकदम शरीरी स्टेज का अनुभव करो। वहां से नीचे सूक्ष्म वतन में आके अव्यक्त मिलन मनाओ, और फिर साकारी रूप में आकर के साकार बाबा की साकारी याद में खो जाओ। तो 6 स्टेप में योग अभ्यास करेंगे। पहले अपने सांसों पर ध्यान देंगे, कितनी स्थिर कितनी एकाग्र हैं, फिर अपने मन के ऊपर ध्यान देंगे, फिर अपने स्वरूप पर ध्यान देंगे, फिर मूल वतन में बाबा के स्वरूप पर ध्यान देंगे, फिर अव्यक्त वतन में आएंगे, फिर साकार वतन में आएंगे। 1 घंटे का अभ्यास है, लेकिन अभी जब आपका इंटरनेशनल योग होगा तब विस्तार से करना। अभी 5 मिनट के लिए अभ्यास हम यहाँ करते हैं।
चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी का, आपने 2-2 क्लासेस कराकर अपने अनुभवों का लाभ हम सबको दिया है। 1 हाथ की ताली से सभी बहुत धन्यवाद कर